विषय है ईश्वर विश्वास और अंधविश्वास। सत्पुरुष या अवतारी पुरुष जब भी किसी देश में आते हैं तो उनका आना दो उद्देश्य से होता है। एक तो वास्तव में जो प्रभु भक्त हैं उनके अंदर जो भक्ति की कमी है उसको पूर्ण करने के लिए उनका आगमन होता है, और दूसरा जो आम जनता होती है, आम जीव जो होते हैं, वो तो सारे के सारे जीव अपने संसारी जीवन को लेकर दुखी हालत में होते हैं। तो उनके दैनिक जीवन से दुख कैसे दूर हो, वो कैसे उस दुख के दुष्चक्र से निकल सके, इसके लिए भी उनका आगमन होता है। तो ये जो आज का विषय है, इसका जो ये दूसरा पहलू है या सामाजिक पहलू है जिसका संबंध आम जनता से है, प्रत्येक गृहस्थी के जीवन से है, तो इस विषय के उस एस्पेक्ट को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ईश्वर विश्वास अर्थात ईश्वर है इस बात पर आस्था होना। यदि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए, आप में से किसी से पूछा जाए, तो शायद आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मुझको ईश्वर विश्वास नहीं। इस बारे में आपका एक सामान्य उत्तर होगा कि ईश्वर है इसको तो मैं मानता हूं। जब आप ये मानते हो कि ईश्वर है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर को मानने से मेरा कल्याण भी होना चाहिए, मेरे जीवन के दुख भी दूर होना चाहिए, अन्यथा ईश्वर को मानने का क्या लाभ हुआ। आपके दैनिक जीवन से, आपके रोजाना के जीवन से यदि ईश्वर का कोई संबंध नहीं है, फिर ईश्वर को मानने का क्या लाभ हुआ। तो जो भी ईश्वर को मानता है वो ये भी मानता है कि ईश्वर अवतार लेता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्य। गीता भी इसका उद्घोष करती है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूं। इसका मतलब है जो ईश्वर अदृश्य है वो सत्पुरुषों के रूप में, अवतार के रूप में शरीर धारण करता है और उस शरीर के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने गुरुदेव का दर्शन किया है? शायद यहां पर बैठे हुए में से 150 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो फिर हम उस सत्पुरुष के द्वारा, उस अवतारी पुरुष के द्वारा कैसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं? तो जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं उसका मतलब है हम अवतार पर विश्वास करते हैं, सतगुरु पर या सत्पुरुष पर विश्वास करते हैं। और सत्पुरुष पर जब विश्वास करते हैं तो उसकी वाणी पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं। अन्यथा विश्वास का क्या मतलब हुआ? क्योंकि मार्गदर्शन तो उनके वचनों से तो आपका होगा। मार्गदर्शन का मतलब है कि रास्ता दिखाना। तो रास्ता क्या है? संसार में तुझको किस प्रकार जीना है यही तो रास्ता है, और रास्ता क्या हो सकता है। कोई सड़क तो आपको तय करनी नहीं है अध्यात्म मार्ग। तो संसार में किस प्रकार मैं जीऊं, किस प्रकार मेरे जीवन का चलन हो, इसके लिए जो शास्त्र वो रच जाते हैं, जो वाणी वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं, उस वाणी को जब हम आत्मसात करके उस पर विश्वास करके चलते हैं, तभी तो ये कहा जा सकता है कि मैं ईश्वर विश्वासी हूं, अन्यथा मेरा ईश्वर विश्वास का कोई मतलब ही नहीं रहा। अन्यथा इसके अलावा यदि कोई बात है तो उसी को फिर अंधविश्वास कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अवतारी पुरुष पर विश्वास ना करे, उसके वचनों पर विश्वास ना करे और मनमाने तरीके से अपने ईश्वर गढ़ ले, मनमाने तरीके से जीवन जिए, उसको फिर अंधविश्वासी कहा जाता है। और अंधविश्वासी में ईश्वर विश्वासी में भेद नहीं होता। हम अपने आप पर टटोल कर देखें कि हम कहां तक ईश्वर विश्वासी और कहां तक अंधविश्वासी। यदि सही सही विश्लेषण किया जाए तो शायद हम में से 10-5 व्यक्ति ही निकलेंगे जो ईश्वर विश्वासी है, इससे ज्यादा संख्या नहीं होगी। ईश्वर विश्वासियों की संख्या हम में से मुश्किल से 10-5 निकल पाएगी, अन्यथा कहीं ना कहीं हम अंधविश्वास में खड़े हुए। तो अपना विश्लेषण करने के लिए आज मैं आपके सामने केवल 5 वचन ग्रंथ श्री समता विलास से आपके सामने पढ़ूंगा, जो गुरुदेव ने अपने हस्तकमल से उनको लिखा है। उन वचनों पर हम अपने आप को तोल कर देखें कि हम ईश्वर विश्वासी हैं या अंधविश्वासी। पहला वचन, प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है, इस वास्ते कर्मों के अनुसार सुख दुख जरूर ही मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस वास्ते ईश्वर शक्ति का भरोसा छोड़कर अन्य वहमों का भरोसा रखना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। ये पहला सिद्धांत है कि हर मनुष्य जो संसार में जन्म लेता है तो उसकी आयु या उसकी श्वासें, उसके जीवन की मुख्य मुख्य घटनाएं, या यूं कहें कि सुख दुख, ये सारा का सारा प्रारब्ध उसके साथ ही जन्म लेता है। और एक और चीज होती है, एक दूसरी बात भी होती है। आप कहेंगे कि जब सारा का सारा प्रारब्ध जन्म वो उसके साथ आता है, सुख दुख उसके साथ आता है, इसके अंदर करने का तो कुछ फल हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं, करने के बारे में गुरुदेव क्या कहते हैं वो देखें। कहते हैं जो कर्म मन करके, बुद्धि करके, इंद्रियों करके किए जाते हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं, चाहे तन मन देवी देवताओं के अर्पण क्यों ना किया जाए। एक तो प्रारब्ध होता है, दूसरा कर्म होता है। जो मैं आज कर्म कर रहा हूं ये मेरा कल का प्रारब्ध तैयार करेगा। और कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जो कल भी नहीं, तुरंत ही प्रारब्ध आपका तैयार करके तुरंत ही फल भी दे देता है। जैसे अभी आप जो है उल्टा सीधा खाना खाइए, आज ही आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आज ही आपका पेट खराब हो जाएगा। इधर कर्म किया उसका फल भी साथ साथ भोग लिया आप। तो प्रारब्ध भी फंक्शन करता है, अपना कार्य करता है, और कर्म भी अपना कार्य करता है। और कर्म के बारे में कह रहे हैं जो कर्म मन करके, बुद्धि करके और इंद्रियों करके किए जाते हैं। कि किसी के मन में विकार तो आ सकता है लेकिन शरीर द्वारा उसने किया नहीं उसको, तो अभी उस कर्म चक्र में वो फंसा नहीं। जब वो कर्म इंद्रियों करके पूर्ण हो जाएगा तब उसका फल उसके लिए ड्यू हो जाएगा। कर्म तो आदमी स्वप्न में भी करता है, वो मन करके तो करता है, मन तो वहां मौजूद होता है, लेकिन स्वप्न के कर्म का फल कोई नहीं होता। आप किसी की हत्या भी कर दें स्वप्न में, लेकिन उसका परिणाम आपको, उसका रिजल्ट आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। इसलिए जब सत्पुरुष की जो वचन होते हैं वो पूर्ण होते हैं, वो कहते हैं कि जो कर्म मन करके, बुद्धि करके, इंद्रियों करके किए जाते हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है। इसलिए बालक कोई 6 महीने का हो और किसी कीड़े को मार दे अनजाने में, उसके लिए कोई फल नहीं है उसका, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ है। और यदि हम ऐसा कर दें तो निश्चित रूप से वो हिंसा का फल हमको प्राप्त होगा, वो हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाएगा, हिंसक स्वभाव बनाएगा हमारा, और इस उस हिंसक स्वभाव के कारण हम आगे हिंसा करेंगे। तो एक तो हुआ प्रारब्ध और एक हुआ हमारा कर्म, लेकिन इन दोनों के फल होते हैं। तो जितना भी ईश्वर विश्वास है और जितना भी अंधविश्वास है, इन्हीं दो सिद्धांतों को जो मानता है वो तो ईश्वर विश्वासी कहलाता है, जो नहीं मानता वो अंधविश्वासी कहलाता है। इसीलिए गुरुदेव ने एक तीसरी बात लिखी, वो भी देखें। ये बात शायद हम में से कुछ लोगों के विश्वास को हिला कर देती, बड़ी ही गंभीर बात है, और जो कुछ भी हम समाज में देखते चले आ रहे हैं उससे बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उलट। लेकिन इसका यदि हमने सही विश्लेषण नहीं किया तो हमको गलत फहमी भी हो सकती है। इसलिए इस वचन को जरा ध्यान से सुने और फिर निर्णय करें कि हम अंधविश्वासी हैं या ईश्वर विश्वासी। तीसरे वचन में कहते हैं, देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा, देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा ईश्वरीय विश्वास को और सत्पुरुषार्थ को नाश करने वाली है। देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा ईश्वरीय विश्वास को और सत्पुरुषार्थ को नाश करने वाली है। इस वास्ते सब पापों की बुनियाद यही पूजा है। अगर उनकी जिंदगी का गुण कर्म ना विचार किया जावे, ये कंडीशन है साथ में। देखिए ये कंडीशन जब निकाल दे तब हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। ये देवी देवताओं की और ग्रहों की पूजा ईश्वरीय विश्वास को और सत्पुरुषार्थ को नाश करने वाली है, और सारे पापों की बुनियाद यही पूजा है। यदि उनका गुण कर्म ना विचार किया जावे या ना धारण किया जावे। अब हम जरा समाज पर नजर डाल के देखें। आपने देखा होगा जब एग्जाम का वक्त आता है तो बच्चों के अंदर एक बड़ी ही व्यथा उनके मन में पैदा हो जाती है, बड़े परेशान रहते हैं, आसरा ढूंढते हैं कि कहीं से एश्योरेंस मिल जाए कि भाई पेपर ठीक हो जाएगा और मेमोरी ठीक रहेगी, जो याद किया वो भूलोगे नहीं। क्योंकि मुझको तो अपने विद्यार्थी जीवन की याद है और मैंने अन्य विद्यार्थियों को भी देखा है, जब परीक्षा के दिन आते थे तो माओ कहते थे कि भाई जाओ हनुमान जी के दर्शन कर जाओ और प्रसाद चढ़ाना, तुम्हारा पेपर ठीक हो जाएगा और तुम्हें जो याद किया वो भूलोगे भी। तो काफी मात्रा में जब एग्जाम के दिन होते तो रोजाना जो है वो हनुमान के मंदिर में लाइन लगा करती, वैसे तो मंगल को लगा करती है लेकिन एग्जाम के दिनों में लंबी लाइन होती थी और रोजाना होती थी। क्यों भाई? क्योंकि ये विश्वास हमको बिठाया जाता था हमारे मन के अंदर कि भाई हनुमान जी का ये दर्शन कर लिया तो वो आपका मेमोरी भी ठीक कर देंगे और आपका पेपर भी ठीक कर देंगे। और यहां ये इस बात के आधार पर तोल कर देंगे कि ईश्वरीय विश्वास को सत्पुरुषार्थ को नाश करने वाली, देवी देवताओं की उपासना ईश्वरीय विश्वास को और सत्पुरुषार्थ को नाश करने वाली है। जरा इसकी तुलना करके देखें ये वचन कहां तक सत्य सिद्ध होता है। तो ईश्वरीय विश्वास क्या है? ईश्वर तो कह रहा है कि प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदल नहीं सकती, और कर्म फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है, ये दो बातें कह रहा है ईश्वर, तो ये दो बातें कह रहा है। तो जिस विद्यार्थी ने ठीक प्रकार से मेहनत नहीं की है, जिस विद्यार्थी ने ईमानदारी से पूरे वर्ष जो है पढ़ाई नहीं की है, तो वो पास होने का अधिकारी है या फेल होने का अधिकारी है? वो अच्छे नंबर लाने का अधिकारी है या खराब नंबर लाने का अधिकारी है? उसके लिए खराब नंबर आना ही चाहिए। तो यदि ईश्वर उसके साथ पार्शियलिटी करता है, उसको अच्छे नंबर देता है, तो ईश्वर से बड़ा अन्यायकारी कौन हो सकता है? ईश्वर से बड़ा अन्यायकारी कौन हो सकता है जिसे मेहनत नहीं की उसको अच्छे नंबर दे दे, ऐसी कृपा कर दे उसको? तो इसका मतलब हुआ जिसने उस उपासना पर विश्वास किया उसने अंधविश्वास को धारण किया, अर्थात उसने ईश्वरीय विश्वास को नष्ट कर दिया और उसे सत्पुरुषार्थ को भी नाश कर दिया, क्योंकि पुरुषार्थ भी नहीं किया उसने। इसी आशय में बैठा रहा कि वक्त आने पर मैं उपासना करूंगा और मेरा काम हो जाएगा, उसका सत्पुरुषार्थ भी गया और ईश्वर विश्वास भी गया। तो यही नहीं, हम देवियों की उपासना देख ले कि किस प्रकार से जहां आपका कोई काम नहीं बना, जहां कोई जीवन में मुसीबत आई, आपने मैं देवी के दर्शन करने जाऊंगा, वैष्णो देवी के दर्शन करने जाऊंगा, देवी मेरा ये कार्य सिद्ध हो गया। और यदि आपको किसी को जाने का कहीं शौक ही हो तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें, कुछ लोग 10-5 लोग छांट लेना आप जो वहां डिमांड करके आते हैं, और फिर उनको बाद में टटोल के देख लेना, उसमें से 2-4 लोगों का काम सिद्ध हो जाएंगे और 2-4 लोगों के नहीं होंगे। जिनके हो जाएंगे वो आगे 100 लोगों को और बताएंगे, भाई देवी के दर्शन से करने से मेरा काम हो गया, सिद्ध हो गया। और जिनके नहीं हुए वो उसको आगे प्रोपेगेट नहीं करेंगे, उसका आगे जो है वो नहीं कहते लोगों से मेरा काम देवी दर्शन करने गया था, मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि अपनी बेवकूफी को कोई आगे एडवर्टाइज नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि प्रारब्ध के अनुसार और तेरे पुरुषार्थ के अनुसार तुझको कुछ कर्म फल मिलना ही है, उसमें देवी कुछ नहीं कर सकती, तेरा हनुमान जी तेरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इस अंधविश्वास के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। तो ईश्वर की या अवतारी पुरुष की यही कृपा हम पर होती है कि वो अपने विधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखित रूप में हमारे आगे बार बार छोड़ जाते हैं और अपने जीवन के द्वारा उसको करके भी दिखा जाते हैं। गुरुदेव के पीर ख्वाजा की ही एक घटना है, शायद आपने भी पढ़ी हो, कि एक बार वहां बकरा काटने की प्रथा थी, तो गुरुदेव के सामने ये बात जब आई तो उन्होंने उनको उस प्रथा को रोकने के लिए कहा। तो उन गांव वाले थे, वो अंधविश्वासित थे, उन्होंने गुरुदेव से कहा कि पीर ख्वाजा जो है हमारी गाय मार देगा, हमारे जानवर मार देगा, इसलिए बलि देना जरूरी, तो मुझे एक्सेक्ट वर्ड तो याद नहीं, लेकिन उसका भाव यह है, गुरुदेव ने कहा कि यदि पीर ख्वाजा तुम्हारा नुकसान करता है तो इनको आके पकड़ लेना, अर्थात ये मुआवजा देने को तैयार है। तो ये बात सब कुछ तो कहते, हम नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि हम तो कुछ नहीं दे सकते, हमारे शक्ति कहां जो दे सकते, लेकिन वो अपने तपोबल से, अपने तेज से ये विश्वास आम जनता में पैदा कर जाते हैं, जो भी उनके संपर्क में आता है या जो भी उनके वचनों के संपर्क में आता है और उन पर विश्वास लाकर चलता है, उनके अंदर जो है ये विश्वास वो ला देते हैं, यही उनकी कृपा होती है। तो ये जो दो बातें हैं कि प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है, इस वास्ते कर्मों के अनुसार सुख दुख जरूरी मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता, इस वास्ते ईश्वरीय शक्ति का भरोसा छोड़कर अन्य वहमों का भरोसा रखना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। तो कई बार हमको भ्रम हो जाता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, इसलिए एक वचन उन्होंने और लिखा, हम तो साधारण जीव हैं। उन्होंने अपने बारे में भी एक वचन लिखा, वो क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं कि मौत, जन्म, दुख और सुख सब कर्मों का फल है, कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती, जरूरी भोग भोगना पड़ता है। गुरु, पीर, अवतार, ज्ञानी, नबी और पैगंबर सबको अपने करने का फल मिलता है, ये ईश्वर की माया का खेल है। हम तो साधारण जीव हैं, हम तो माता देवी दर्शन करके अपने प्राण को बदलने की कोशिश करते हैं, और यहां वो कहते हैं गुरु पीर भी नहीं बच सकता, जो कर्म उन्होंने किया आज का फल उनको जरूर भोगना पड़ता है। कई बार देखा होगा कि जो अवतारी पुरुष होता है वो बचपन से लेकर शरीर के अंत पर्यंत कोई भी दुष्कर्म नहीं करता, कोई पाप नहीं करता, क्योंकि बचपन से बुद्धि होश में होती है, ईश्वर का ज्ञान होता है, इसलिए वहां पाप होने की, गलती होने की संभावना रहती नहीं, लेकिन फिर भी बड़े ही कष्ट वो भोगा करते हैं। जानबूझ परमंश देखो, कंठमाला करो, जो गले का कैंसर कहा जाता है उनको हुआ, गुरुदेव को भी देखो जीवन को, कान में कितना तेज दर्द, संग्रहणी, पेट की तकलीफ तो कितनी उनको हुई। महर्षि रमण तो देखो कि वहां में उनके कैंसर हुआ, तो ये तीन तो वर्तमान सत्पुरुष में। स्वामी रामतीर्थ देखो, संग्रहणी और रोग उनको हुआ, तो क्या कारण है? तो ऐसा तो होता है कि यदि कोई सत्पुरुष आपके संपर्क में आए, आपके कष्ट को देखे, तो इतनी उसके अंदर सामर्थ्य होती है कि वो आपके कष्ट को अपने शरीर पर भोग सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, भाई ये गुरु बनना बड़ा कठिन काम है। क्यों? क्योंकि शिष्य के पाप ताप उनको लेने पड़ते हैं, यदि वो ना ले तो शिष्य को ठंडक महसूस नहीं होती, उसका प्रारब्ध इतना खराब होता है, इतना दुखपूर्ण होता है कि एक बार तो गुरु उसको ठंडक के दर्शन कराता ही। तो लेकिन जरा विचार करके तो देखिए कि गुरु हमारी कितनी सेवा करता है, अपने सारे जीवन का बलिदान करके, अपने शरीर का हमारे लिए बलिदान करके, अपने खून की एक एक बूंद हमारे लिए न्यौछावर करके, वो हमको शांति प्रदान करता है, वो सारे हमारे पाप अपने शरीर पे भोगता है। तो गुरु कृपा कोई साधारण कृपा नहीं होती, ये ग्रंथ जो आपके सामने, ये वाणी जो आपके सामने आ रही है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। यद्यपि हमको बड़े साधारण रूप में ये चीज प्राप्त हो रही है, लेकिन ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये तो सत्पुरुष ही जान सकते हैं, या कोई महान विद्वान जिसका प्रैक्टिकल जीवन भी पीछे खड़ा हो, वो इसके महत्व को समझता है कि वास्तव में ये कितनी अनमोल चीज है। ये जो चार पांच वचन है, यही पूरे जीवन में हमारे क्रांति ला सकते हैं, वास्तविक क्रांति। लेकिन कब? जब मेरे अंदर गुरु विश्वास, मैं यदि इस बात को स्वीकार कर लूं कि महात्मा मंगतराम जी के रूप में जिस ईश्वर ने अवतार लिया उस पर मेरा पूर्ण विश्वास है, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, उसकी जितनी भी लिखित वाणी उपलब्ध है उसके एक एक अक्षर पर मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं, इसका सीधा ये एक ही मतलब होता है, इसका अन्य कोई अर्थ नहीं होता। तो इन वचनों को जब मेरी बुद्धि स्वीकार कर लेती है, तब जब भी मैं अंधविश्वास की ओर बढ़ता हूं, ये वाणी मुझको रोक देती कि गुरु क्या कह रहा है और तू क्या कर रहा है। फिर ज्योतिष को खुश करने की कोशिश नहीं करते, पंडित को खुश करने की कोशिश हम नहीं करते, हम उनका भय हमारे मन से जाता रहता है। मैंने तो अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकल करके देखा, ये तो मैं कह सकता हूं कि मुझको गुरुदेव पर विश्वास है। इसीलिए जब मैंने उनकी वाणी पढ़ी, उनका जब संतविलास पढ़ा, तब मैंने कहा जब कुछ ये बात सत्य है, जब ये गुरु बात कह रहा है, तो फिर मैं अंधविश्वास के चक्कर में क्यों पड़ा। मकान बनने का नंबर आया, जब नींव रखी गई तब गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव ने कहा कि तेरा संबंध ईश्वर से सीधा है, बीच में किसी मीडिएटर किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। ये बात तो बुद्धि ने पकड़ ली, जब गुरु पर विश्वास किया ही है तो उनके कहने से चलते क्यों नहीं। जब गुरु से हमारा संबंध या ईश्वर से संबंध सीधा है तो फिर बीच में मध्यस्थ की जरूरत क्या है। जब नींव रखी गई तो हमने की जो महामंत्र है तो गुरु रूप है, ईश्वर रूप है। तो पांच बार महामंत्र पढ़ा, नींव रख दी, और जो गरीब था बेचारा, जो काम कर रहा था, उसको कुछ दक्षिणा दी, उसको भेंट दी, वो प्रसन्न हो गया और प्रसाद बांट के काम जो है 10 मिनट में संपन्न हो गया। जब परिवार में मौत हुई उस वक्त भी यही किया, सारे झंझट से मुक्त होकर केवल 5 बार महामंत्र पढ़ के वो शरीर को अग्नि लगाकर सारे कर्मकांड से बचकर और 10वें दिन सत्संग करके और कर्म समापन हो गया। यदि आप ये जन्म मृत्यु शादी ये जितनी भी रस्में होती हैं, इसके पीछे अंधविश्वास खड़े हुए हैं कि पंडित हमारे जो घर में मृत्यु हुई है उसकी गति करा देगा, विवाह में कोई विघ्न नहीं आएगा, उस विघ्न को पंडित दूर कर देगा, यदि मैंने उस पंडित के द्वारा नींव नहीं रखवाई तो मेरा मकान गिर पड़ेगा, और यदि बन भी गया तब भी मैं काली हांडी जरूर टांग दूंगा किसी की नजर ना लग जाए। वाह, मैं अपने को ईश्वर विश्वासी कहता हूं और महान अंधविश्वासी होकर मैं कर्म करता। अरे उसकी नजर तेरे प्रार्थ को बदल देगी, कैसा तू ईश्वर विश्वासी। कहता मैं गुरु को धारण किए हुआ हूं, गुरु पर पूर्ण विश्वास है। क्या कहने हैं तेरे गुरु विश्वास के, तूने मकान बनाया तो काली हांडी टांग दी, क्यों टांग दी भाई, कि किसी की नजर लग जाएगी ये मकान ढह जाएगा, तेरे प्रार्थ को उसकी नजर बदल देगी। तो कहां कहां हम खड़े हुए हैं, कहां कहां अंधविश्वास हमको मार रहा है, कैसे कैसे भयभीत हम लोग रहते हैं। पूरब को आज नहीं जाएंगे, दिशा खराब है, बुद्ध के दिन नहीं आएंगे, ग्रह हमारे जो है वो ठीक नहीं है। आप यदि किसी पंडित के चक्र में पड़ जाओ, किसी ज्योतिष चक्र में पड़ जाओ, सारी जिंदगी भर आपको लूटता रहेगा और आपको दुष्चक्र में फंसाता रहेगा। लेकिन ये मात्र 2 वचन पर यदि विश्वास कर ले हम, लेकिन ईश्वर विश्वास तभी हो सकता है जब पक्का हमारे अंदर ईश्वर विश्वास हो, तो इस सारे माया जाल से हम बच जाते। अरे जब प्रार्थना ही कर रही तो ईश्वर से क्यों नहीं करते, और सिद्ध मंत्र के द्वारा प्रार्थना, इससे ऊंची प्रार्थना और क्या हो सकती है, ये सर्वोच्च प्रार्थना है। तो जिसके द्वारा तेरे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, जिसके द्वारा तेरा शरीर चलता है, शरीर का संचालन होता है, शरीर तेरा जीवित रहता है, तेरे सारे कर्म फल को जो सुरक्षित रखता है, तो प्रार्थना क्या है, तेरे पूर्व जन्मों का कर्म फल ही तो है, तू तो इस बैंक बैलेंस को भूल गया, लेकिन तेरे ईश्वर ने उसको सुरक्षित रखा, उसको खोया नहीं, उसको मिटने नहीं दिया। यदि बैंक में बैलेंस छोड़कर तू मर जाए तो वो तुझको द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, विद्या सारी संसार की प्राप्त हो तू मर जाए तो एक काखा भी तुझको अगले जन्म में प्राप्त नहीं होगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उस ईश्वर को हम भूल जाते हैं जो हमारे सारे प्रार्थ को सुरक्षित रखता है और इस जन्म में पुनः दे देता है, और इतना ही नहीं करता कि रचना भी करता है, फिर हमको चेतावनी देता है, फिर हमको ज्ञान देता है कि इन वचनों को तू पढ़, इस पर मां इसको मान और इस पर चल, फिर देख तेरे जीवन के कष्ट दूर होते हैं या नहीं होते। तो हमने जितने भी ये पाल रखे हैं टंटे अंधविश्वास के, ये वास्तव में ये जो बात लिखी है
कि जितने भी ये देवी देवताओं के पास आए, ये ईश्वरीय विश्वास को और सत्पुरुषा को नाश करने वाली है और ये सारे पापों की बुनियाद है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आज रशिया में चले जाइए, देखिए कर्म करते हैं, कम्युनिस्ट है, ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन कितने आगे हमसे बढ़ गए विज्ञान में, देखिए उनकी प्रगति कहां पहुंची। और हम ईश्वर को मानने वाले, हम कहां रह गए पीछे। तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। सीधा सीधा जो है, जो कुछ भी आप कर्म करते हैं उसका फल निश्चित प्राप्त होता है। तो पापों की बुनियाद इसलिए है कि हम साल भर तो नंबर दो की कमाई करते हैं और साल के अंत में देवी दर्शन या तीर्थ यात्रा करके सोचते हैं कि अब सारा हमारा खाता नंबर एक का हो गया, सारी इनकम हमारी नंबर एक में आ गई है। तो धड़ल्ले से पाप करते हैं। तो ये जो हमारे अंधविश्वास बैठा हुआ है, ये देवी देवताओं की उपासना करके जो हमने ये अंधविश्वास धारण कर रखा है, यही पापों की बुनियाद है। ये हमको सत, हमारे सत्पुरुषार्थ को नाश कर देता है। गुरुदेव का तो वचन कहता है कि जो ईमानदारी की कमाई होती है उसका 10% जो दान है, यदि उस दान को व्यक्ति अपने इस्तेमाल में ले लेता है तो वो हानि के देने वाला है। देखिए गुरुदेव का एक वचन संत रास में जब दान के सिद्धांत की बात करते हैं, वो ये बात वहां लिखी। पहली कंडीशन तो ईमानदारी की कमाई हो और दूसरी कंडीशन उसी ईमानदारी कमाई में से 100 रुपए यदि आदमी कमाया है उसमें 10 का नोट निकालकर आप गरीबों की सेवा के लिए, धर्म कार्यों के लिए रख लीजिए। यदि उस 10 रुपए को आप अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं तो ये हानि के देने वाला है। इसका मतलब यह कि उस 10 रुपए पर हमारा हक ही नहीं बनता। हानि तो तब होगी जब दूसरे का माल खा जाओगे। पाप करोगे तभी तो हानि होगी, या पुण्य ना करने से हानि नहीं होती है, पाप कर्म करने से हानि होती है। वो 10 रुपए यदि हम खा गए तो हमारी हानि होगी। वो एक अलग विषय है, अलग विशेषण है उसका, वो कैसे हानि होती है। लेकिन बात ये होती है यहां पर कि जिस ईश्वर पर हमने विश्वास किया है उसने अवतार लेकर जो कुछ भी ज्ञान हमको दिया है उस ज्ञान पर विश्वास करना ही ईश्वर विश्वास है। अन्यथा हम अंधविश्वासी हैं, हम ये भूल जाएं कि हम गुरु को मानने वाले हैं और ईश्वर को मानने वाले हैं। तो अंत में केवल एक वचन में आपके सामने और पढ़कर इसको विराम दूंगा। अंतिम वचन, कर्म जो किए हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है। कर्म जो किए हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, मगर ईश्वर की उपासना से उन कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, यानी निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वही स्थान असली खुशी का है। अब मन में एक दूसरी बात आ सकती है किसी कि भाई सारी देव देवताओं के पास हमने ईश्वर की उपासना बंद कर दी और कर्म ही करते रहे तो इस उपासना का लाभ ही क्या होगा। फिर यदि हम उपासना करते भी हैं तो उस उपासना का लाभ क्या होगा। तो उपासना सही रूप में की क्यों जाती है, ये बात ये वचन बता रहा है कि ईश्वर की उपासना कर्म फल से बचने के लिए नहीं की जाती। वो तो आपको मिलेगा, तो गुरु खुद नहीं बच सकता उससे तो आप कैसे बच जाओ। तो कहते हैं उसका लाभ ये होता है कि कर्मों के फल की आसक्ति से ये मानव मुक्त हो जाता है। हम जो कर्म फल का दुख सुख भोगते हैं और हम उसमें जो बेचैनी हमारी अंदर बनी रहती है, भय जो बना रहता है, उस सबसे हम बच जाते हैं। जो ईश्वर की उपासना सही रूप में करते हैं, अपने कर्म फल को बदलने के लिए नहीं करते, वो क्या होता है कि दुख का जब वक्त उनके जीवन में आता है दार्दवश, तो वो दुख उनको अधिक सताता नहीं, वो ईश्वर आज्ञा में उसको भोग कर शांति से अपना जीवन व्यतीत कर देते। तो इस शांति के साथ ही, इस शांति को लिए हुए ही वो ईश्वर की आराधना भी कर पाते हैं, नाम जप भी कर पाते हैं और ईश्वर का दर्शन भी कर पाते हैं। तो ये जो विषय था सत विश्वास और ईश्वर विश्वास और अंधविश्वास, इसका संबंध जो है हमारे दैनिक जीवन से है। हम जो कुछ भी अपने जीवन में कार्य करते हैं उनके आधार पर हम और इस विचार के आधार पर इन वचनों के आधार पर अपने आप टकरोगे देखें कि हम अंधविश्वासी हैं या ईश्वर विश्वासी हैं। ओ धन सत्य
वाणी चलन की नौबत बज रही नित रहो होशियार ऐसी संपत काट लो जो अंत काल होवे सुखकार। सत करनी की खोज कर जो अंत काल सुखदाए बिन करनी ये जीवड़ा पावे खनी सजाए। सरजन हार दयाल को नित राखो फिर माई सुन पूरे गुर की सिख्या दीन काल सुख पाई। सब जीवों पर मेहर कर कहर जुलम को त्याग सरजन हार सो देखता पल पल लेवे हिसाब। दुखियों का दुख दूर कर सतनाम चित धार सुफल होवे जगयावना नीति ये विचार। रल मिल संगत रूप में सत का करो विचार पावे सब कल्याण को पाप पूप होए चार। मार्ग भक्ति सहज ये भय करे सब दूर आज्ञा माने साहिब की पावे आनंद सरूर। सब साजन मिल गाइयो सत करतार भगवंत मंगत करनी सार ये परम शांत देवंत। सब साजन मिल गाइयो सत करतार भगवंत मंगत करनी सार ये परम शांत देवे अंतर।